ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 30। अध्याय का शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन, श्लोक क्रमांक 29। अत्रैव नरका स्वर्गा इति मात प्रचक्षते या यातना वै नारक्य ता इहापि उपलक्षिता। भाषांतर तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भाषांतर कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती है। तात्पर्य, कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के इन कथनों को नहीं मानते, वे ऐसे प्रामाणिक विवरणों की अवहेलना करते हैं। अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कहकर करते हैं कि ये नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल यमराज के निवास करने वाले लोक में ही हो। यमराज के लोक में पापी पुरुष को उन नारकीय परिस्थितियों में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है जो उसे अगले जीवन में सहनी होगी, और फिर उसे दूसरे लोक में यही नारकीय जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है, फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है जैसे कि एक शुकर का, जिससे कि वह मल खा सके और यह सोचे कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। पीछे यह बताया जा चुका है कि कैसे भी नारकीय परिस्थिति में बद्ध जीव अपने को सुखी मानता है, अन्यथा यह संभव नहीं कि वह नारकीय जीवन भोग सके। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं आपसे कृपा याचना करता हूं कि मैं इस परमहंस संहिता श्रीमद् भागवतम पर श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को थोड़ा सा हम खुलासा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर टॉपिक चल रहा है यहां। अभी कई लोगों को सुंदर लगता है, कई लोगों को कड़वा लगता है, भक्तों को अच्छा लगता है। इस प्रकार जो विषय भौतिकवादी लोग पसंद नहीं करते हैं, भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन, क्योंकि भौतिकवादी लोग विपरीत कर्म ही करते रहते हैं, उनको अच्छे कर्म पता ही नहीं है। तो कई बार लोग कहा जाता है कि नरक का वर्णन, नारकीय यातनाएं, इस श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का तो अध्ययन भक्त लोग करते हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में कहा गया है कि कोई भगवान का एक बार स्मरण भी करता है या कृष्ण का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसे नरक में जाने का तो बहुत दूर की बात है, उसे स्वप्न में भी यमदूत के दर्शन नहीं होंगे, ऐसा भगवान का उसे वचन है। सकृत अभी एक बार भी अगर कोई करता है तो फिर इस प्रकार का वर्णन इस भागवत में क्यों है। तो भागवत संपूर्ण मानव समाज के लिए है, लेकिन इसका आस्वादन भक्त लोग करते हैं, क्योंकि संपूर्ण मानव समाज भगवान के पुत्र है और भगवान इस शास्त्र के द्वारा उपदेश देना चाहते हैं। कई बार कई भक्त, हम भक्त के बारे में सुना था कि ये शास्त्र भगवान का जीवात्मा के लिए प्रेम पत्र है, पत्र लिखा गया भगवान के द्वारा, इसको पढ़िए अच्छी तरह से और अपना जीवन को उसको अपना जीवन इस तरह चलाइए। लेकिन आज समाज की दुर्दशा ऐसी है कि शास्त्र को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। आजकल लोगों को पूछा जाए गीता भागवत क्या है तो वो पता नहीं लोगों को, और लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जब हम बसों में या ट्रेनों में जाते हैं लोगों को गीता भागवत दिखाते हैं तो लोग वो देखने में दिलचस्पी नहीं देखते हैं। हालांकि न्यूज़पेपर उपन्यास बहुत सारे पढ़ेंगे, बहुत टाइम गंवाएंगे, लेकिन गीता भागवत पढ़ने में रुचि नहीं है। तो आज का समाज की और आज के जो नेता है वो लोग भी इसको बढ़ावा नहीं दे रहे। चलो, प्रभुपाद जी ने गांधी जी को लेटर लिखा था कि आप तो गीता के बड़े उपासक है, आप हमेशा आपके पास गीता रखते हैं, तो अभी हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो आप इस गीता भागवत की शिक्षा स्कूलों में इसका उद्घाटन या इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। पता नहीं प्रभुपाद जी का उसका उत्तर आया नहीं, क्योंकि गांधी जी को तो हजारों लेटर आते थे, वो गीता उनके पास लेटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी सेवा कर दी थी। अगर वो लेटर प्रभुपाद गांधी जी के पास पहुंच जाता था और भाग्यवश अगर गांधी जी उसको पढ़ के अमल कर लेते थे तो आज समाज की या भारत की तो स्थिति अलग हो जाती थी। लेकिन आज के नेता बोल रहे हैं कि हमारा देश सेक्युलर है, सर्वधर्म समभाव। पता नहीं प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये किस प्रकार का सर्वधर्म समभाव है, कोई भी धर्म की शिक्षा दी नहीं जा रही स्कूल में। अगर हिंदू स्कूल है तो गीता भागवत पढ़ना चाहिए, मुस्लिम स्कूल है तो कुरान पढ़ना चाहिए, अगर कोई ख्रिस्ती स्कूल है तो उसमें बाइबल पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी भी ग्रंथ की शिक्षा नहीं दी जाती है। आज ये समाज की शोकांतिका है, लोगों को पता ही नहीं क्या करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने यह संस्था का निर्माण किया है और ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला है और संपूर्ण जगत में, संपूर्ण देशों में इसकी शाखाएं खोली है, ताकि कुछ भाग्यवान जीव इसका फायदा उठाकर अपना जीवन निस्तारे। ब्रह्मांडे ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत कोटि जीव विचरण कर रहे हैं, उसमें कुछ ही भाग्यवान जीव जिनको गुरु और कृष्ण के कृपा से कृष्ण भक्ति का बीज मिलता है। तो यहां पर कपिल मुनि अपनी माता को कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अभी एक इस अध्याय का अंत आ रहा है, इस अध्याय में कुल 34 श्लोक है और आज का श्लोक 29वां है और 5 श्लोकों की वर्णना होंगी। तो अभी तक आप अनेक अनेक वक्ताओं से इस अध्याय को जान गए हैं, इसमें क्या क्या किस प्रकार का वर्णन है, किस प्रकार जीव भ्रमित होकर इस जगत में फंस जाता है, क्यों फंसता है और फिर किस प्रकार फंसा रहता है, अपने बद्ध अवस्था में अपने शरीर को सब कुछ मानते हुए, अपने परिवार को सब कुछ मानते हुए, बच्चे परिवार धन दौलत में फंसा रहता है और जिस योनि में रहता है उसमें संतुष्टता या सुख मानता है, अलग अलग प्रकार से धन कमाता है और अलग अलग प्रकार से वर्णन हम सुनते आ रहे हैं, फिर पाप करने के कारण किस प्रकार उसको नरक में घसीटा जाता है। 99,000 योजन, एक योजन का मतलब होता है 12 किलोमीटर, तो आप सोचो कि 1,00,000 योजन मतलब 12,00,000 किलोमीटर की यात्रा कुछ पलों में उसको पार करनी होती है, और वो यात्रा कोई सुखद यात्रा नहीं होती है कि रॉयल रोड है और एसी गाड़ी होती है, नहीं, उसे यमदूत घसीटते लेके जाते हैं और जिस रोड पे चलता है वो तप्त रोड रहता है और उस रोड पर, इसमें वर्णन हमने सुना है कि अलग अलग पशु कुत्ते बिच्छू सांप उसको काटते रहते हैं, और ये असली वर्णन है, कोई गलत वर्णन नहीं है। इसलिए प्रभु जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के इन कथनों को नहीं मानते, उनको लगता है किसने देखा है नरक, किसने देखा है स्वर्ग। कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छी बात, कभी कभी शास्त्र का वचन मुंह से निकल जाते हैं, अरे नरक स्वर्ग तो यही है। तो कपिल मुनि भी बोल रहे हैं, हे माता, कभी कभी कहा जाता है कि इसी लोक में नरक तथा स्वर्ग का अनुभव होता है, कभी कभी गलती से भी लोगों के मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं, तो लोग इसलिए नरक में या असली नरक में विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि उनको इसका वर्णन सुन के ही वो कांप उठते हैं कि अगर हम पाप कर्म तो छोड़ नहीं सकते हैं, पाप कर्म में तो हम रत है, लेकिन पाप करने के बाद ऐसे किस जगह में हमको लिया जाता है और वहां इस प्रकार की यातना दी जाती है, इसका वो विश्वास रखते नहीं, क्योंकि अगर विश्वास रखेंगे तो उनको वो सब छोड़ना पड़ेगा और छोड़ने की तो अच्छी है ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई व्यक्ति जाने या ना जाने अगर वो गलत कर्म करेगा इसी जगत में भी, तो उसको कारागृह में जाना जाएगा। और वो बोलेगा मैं कारागृह में विश्वास नहीं रखता हूं, तो विश्वास मत रखो, तुम्हारे पास पुलिस आएंगी, तुमको दंडे लगाएंगी और कारागृह में डालेंगे। तो इस जगत का लोग क्या है, हमको दिखाओ तो हम विश्वास करेंगे, है ना। तो असली नरक तो देखता देखता नहीं, इस आंखों से भगवान बोलते यही नरक देख लो, यही नरक देख लो कि जिन जिन लोगों ने पाप कर्म किया है पूर्व में, तो उनकी दशा क्या है। कई लोगों को दोन आंख नहीं होते, आंखों से अंधे है। आप सोचो 10 मिनट के लिए आप अंधा बन जाओ, आपके आंखों के ऊपर पट्टी लगाओ तो आपको किसी का हेल्प लगेगा, नहीं तो आप चल नहीं सकते, चलोगे तो आप कहीं ठुकरा जाओगे। तो लोग दोनों आंखों से अंधे रहते हैं, कई बार लोगों दोनों हाथ नहीं होते हैं। आप सोचो एक हाथ भी नहीं है तो कितनी यातनाएं होती है, दोनों हाथ नहीं है तो व्यक्ति खाएगा कैसे, पिएगा कैसे, क्या क्या करेगा। कभी कोई दोनों पांव नहीं होते हैं, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, कितना तकलीफ इस जगत में हम देखते हैं, है ना, खाने को नहीं मिलता लोगों को, और कई प्रकार की हम नरक यातनाएं इस जगत में देखते हैं। जैसे सुअर का जीवन हम देखेंगे तो हम जैसे सुअर को देखते ऐसा मन में अलग सा लगता है, लेकिन उसको उसमें आनंद लगता है, ये तो माया का प्रभाव है। इसमें कपिल देव वर्णन कर चुके हैं कि जीवात्मा जिस किस योनि में रहता है उसमें वो संतुष्ट रहता है, अगर संतुष्ट नहीं रहेगा तो मर जाएगा। अगर सुअर को लगेगा ये किस प्रकार का जीवन है तो आत्महत्या कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि सुअर तो आत्महत्या नहीं करते, वो मोटे होते रहते। क्यों मोटे होते हैं, क्योंकि सुख, उसको उसमें सुख मिलता है। इस जगत में जो कोई व्यक्ति तथाकथित सुखी रहता है वो मोटा होता जाता है। तो सुअर हमेशा मोटे होते रहते हैं क्योंकि वो विष्ठा खाना, वो उसमें रहना, वो इसमें रहना। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी वो जीवन नरक लगता है। किसी को भी लगता नहीं कि मुझे इस योनि में जाना पड़े, लेकिन क्या करेंगे, अगर विपरीत कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे तो वो जाना ही पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस जीवात्मा ने या इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कुछ तो गलत कर्म किया है, इसलिए उसको स्वर्ग का जन्म मिला है। सबको तो नहीं मिला है, और इस जगत में स्वर्ग का अनुभव मिलता है। यहां कभी कभी व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे अभी भारत में सबसे अमीर व्यक्ति को है अंबानी परिवार, ये मेरी जानकारी से, पता नहीं कोई दूसरा भी हो सकता है। तो उस घर में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो तो जन्म से ही सोने की थाली में और सोने के चम्मच से और सोने के बेड पे सोएगा। हमने सुना कि उन्होंने अंबानी परिवार ऐसे भक्तों से इधर उधर सुना था कि वो अपने लिए 10,000 करोड़ का बंगला बना रहे हैं। आप सोचो 10,000 करोड़ किसको बोलते हैं। अगर किसी भक्त के पास अगर 10 करोड़ आ जाएगा तो वो नगर नगर गांव गांव में मंदिर बांध देगा, लेकिन ये अपने लिए घर बांध रहे हैं। उसमें सब प्रकार की व्यवस्था होगी, उसमें स्विमिंग टैंक होगा, सोने के नल होंगे और ऊपर ही वहां हवाई जहाज उतरेगा, सब प्रकार की सुविधा। और कितना दिन तक है, मैक्सिमम 60-70-80 साल तक। लेकिन अगर उस घर में कोई बालक जन्म लेता है तो उसको किसी भी चीज की कमी नहीं है, हर प्रकार का ऐश्वर्य उसको मिलेगा। उसके जन्म लेते ही 100 नौकर उसके पास रहेंगे, है ना। उसको स्कूल में जाने के लिए अलग कार होंगी, अलग प्रकार की नौकर, सब प्रकार की सुविधा होंगी, तो वो उसी के लिए स्वर्ग जैसा है। तो इस जगत में व्यक्ति को नरक जैसी परिस्थिति या स्वर्ग जैसी परिस्थिति का भी अनुभव होता है अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन आजकल लोग कर्मों में विश्वास ही रखते नहीं, और उनको शिक्षा देने के जाए तो वो शिक्षा लेते नहीं है। तो ये पाप कर्मों से होता है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक विषय में रुचि नहीं होती है। राधागोविंद महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति अलग अलग साधुओं की सेवा कर रहा था जो कि संप्रदाय में नहीं थे, और अलग सब प्रकार के नियम तोड़ रहे थे, लेकिन साधु के वेश में थे। तो बोल रहे थे कि महाराज को पूछा गया कि महाराज ये व्यक्ति साधु की सेवा, ऐसे गलत गलत साधु की सेवा क्यों कर रहा है। तो महाराज बोले मैं थोड़ा परमात्मा हूं, मैं क्या जानता हूं। नहीं नहीं आप थोड़ा शास्त्र के अनुसार बताकर जा। तो महाराज बोले कि अनंत अनंत जन्मों का जो पाप उदित होता है तो व्यक्ति गलत गलत साधु में सेवा में लग जाता है और उसको अध्यात्म में रुचि नहीं रहती है, या ढोंगी गुरु के संपर्क में आ जाता है। और जब व्यक्ति के अनेक जन्मों का पुण्य उदित होता है तब व्यक्ति सही संप्रदाय में सही संप्रदायी गुरु के संपर्क में आता है। तो हम जान सकते हैं कि हम जब इस्कॉन जैसे एक संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय में जुड़ते हैं, तो हम ये सोच सकते कि हमने कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किया था, इसलिए हम प्रभुपाद जी जैसे एक प्रामाणिक साधु के संपर्क में आए, और आगे का कार्य इसलिए प्रभुपाद जी कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, उनके पुस्तक के संपर्क में आए हैं, उनके भक्तों के संपर्क में आने से हमारी अभी और सुकृति ज्यादा बढ़ रही है और हमको रुचि आ रही है। और प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि भक्तों को, भौतिकवादी लोगों को संग देना चाहिए ताकि उनके पाप कर्म नष्ट हो जाए और वो भी इसको से और प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि बुक वितरण करना चाहिए, क्योंकि हम उपदेश देने जाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं, तो लोगों को बोला ये बुक पढ़ लीजिए, 10 रुपए का बुक है ले लीजिए, एटलीस्ट उनके हाथ में थमा दीजिए, अगर मेरा पुस्तक भी कोई स्पर्श करता है, मेरा हाथ में ले लेता है, देखता है कि दिलचस्पी से कि इसमें क्या लिखा है, तो कई पाप नष्ट हो जाएंगे। और फिर भगवान बोलते हैं एशाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोहने मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जब व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पुण्य कर्म करने लगता है तब भगवान के भजन में उसकी रुचि बढ़ती है। तो हम भक्तों का यह कर्तव्य है कि जब हम देखते हैं कि समाज में लोग पाप कर्म कर रहे हैं तो उनका पाप नष्ट करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और हमारे पास तो बहुत सारे बड़े बड़े वेपन है पाप नष्ट करने के, प्रभुपाद जी किताब है, महामंत्र है, महाप्रसाद है, हरिनाम संकीर्तन है, और भगवान के भक्त एना केना प्रकार है ना यही लगाते रहते हैं कि किसी तरह जीवात्मा भगवान की भक्ति में लग जाए और उसका जो अनंत जन्म का पाप कर्म है और वो जो अनंत यातना है उसकी समाप्त हो जाए। इसलिए भक्तों को कहा जाता है पर दुखी दुखी, दूसरों का दुख देखकर उसको दुख लगता है, और पर सुखी सुखी, जब कोई व्यक्ति भक्ति ग्रहण करता है, भगवान की भजन में लगता है तो उसको आनंद मिलता है। तो इस जगत में नरक तथा स्वर्ग का अनुभव होता है। तो अविश्वासी लोग नरक में वर्णन नहीं रखते, विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो लोग अपना पाप कर्म नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो यहां भगवान जैसे बोल रहे थे कि विपरीत कर्मों का वर्णन, तो जीवात्मा विपरीत कर्म क्यों करता है, तो इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन भी भगवान कृष्ण को गीता में 3रे अध्याय में पूछ लेते हैं कि हे भगवान मेरी इच्छा नहीं होती है भी मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, और वो एक जनरल प्रश्न पूछ लेते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषो अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादित नियोजित। बोल रहे कि अथ केन प्रयुक्तोयम, ऐसी कौन सी चीज है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, कि व्यक्ति यहां पाप करने के लिए बाध्य हो जाता है, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, हे भगवान कि अनिच्छा इच्छा नहीं होती भी, जैसे उसको बल पूर्वक उसको नियोजित किया जा रहा है, कि ऐसा क्या कौन सी चीज है, तो भगवान बताते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम एत वैरिनम। भगवान बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, काम का मतलब है भौतिक इच्छाएं। अभी जीवात्मा को तो आध्यात्मिक इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन रजोगुण के संपर्क में आने से जीवात्मा अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करता है, कि अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और ये काम जब तृप्त हो जाता है, उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी होती है अनेक अनेक प्रकार, तो लोभ बढ़ता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए, और किसी ना किसी वश अगर उसकी काम वासना या उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो उसको क्रोध आता है। तो यह है काम क्रोध लोभ। तो भगवान बोल रहे हैं गीता में ही कि काम क्रोध तथा लोभम नरकस्य त्रयम द्वारम, कि काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 महाद्वार है, इसी एक महाद्वार से ही जीवात्मा नरक में प्रवेश करता है। इसलिए प्रभुपाद जी भगवान बोल रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति को काम क्रोध और लोभ छोड़ देना चाहिए, त्रयम त्यजत, इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, आगे बोल रहे हैं कि महाशनो, महाशन मतलब ये जीवात्मा को सॉलो कर रहा है, मतलब निगल रहा है, और महापापमा, एक तो था पाप, ये तो महापाप, काम और क्रोध से ही व्यक्ति पाप और महापाप करते रहता है ना, ये तो काम और क्रोध है, इसके कुछ बंधु भी है और लोभ मोह मदमाश्चर्य, तो ये महापाप करने के लिए बाध्य कर देता है जीवात्मा को। और क्या बोला है, विद्धि एनम वैरिनम, कि हे अर्जुन जानो कि ये जीवात्मा का नित्य वैरी है। और उत्तम ज्ञान मेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना काम रूपेन कौन्तेय दुष्पुरेन अनलेन च। आवृत्तम ज्ञान मेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना, तो जीवात्मा का जो शुद्ध ज्ञान है, जीवात्मा का शुद्ध ज्ञान क्या है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास, कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। और महापुरुष बोलते हैं कि गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानु दासानु दास, हम तो भगवान के दासों के दासों के दास है। इस भावना में 24 घंटे रहना मतलब ज्ञान है, और असली ज्ञान इसी में रहता है, इसी में कार्य करता है। लेकिन ये काम जीवात्मा को आवृत कर देता है, ये भुला देता है कि वो दास भी है। काम और क्रोध के वश में आकर जीवात्मा अपने आप को बॉस समझता है, हालांकि वो दासानुदास है लेकिन समझता क्या है, बॉसानुबॉस। एक बार श्रील प्रभुपाद जी उनको गीता का प्रकाशन करना था, तो एक जापानी कंपनी में गए और वहां के प्रोडक्शन मैनेजर को मिले और फिर थोड़ा प्रचार करने लगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उसके बाद बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए थे, एक कंपनी का सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और एमडी ईडी और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, सब कार्ड थे और सबसे नीचे उसका कार्ड था, क्योंकि वो एकदम सिंपल सा प्रोडक्शन मैनेजर था। तो बोले तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसने अपना नीचे का कार्ड निकाला और ऊपर रख दिया, मेरा जीवन का लक्ष्य है इस कंपनी का मालिक बनना। तो प्रभा जी बोले इस प्रकार की भावना सब जगह है, सब बॉसों बॉस इसे सब बॉस बनना चाहते हैं, और इसीलिए इस जगत में क्लेश है। अगर सब बॉस बनेंगे तो दास कोई बनेगा नहीं, अभी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। और आध्यात्मिक जगत में इससे विपरीत परिस्थिति है, आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति दासों का दास बनना चाहता है। आध्यात्मिक जगत में जब राधा रानी अलग अलग गोपियों को भगवान कृष्ण की सेवा में भेजती है तो उसको आनंद आता है। राधा रानी ये नहीं सोचती कि मैं अकेली सेवा करूंगी, सारी सेवा मेरे द्वारा होनी चाहिए, नहीं, वो तो चाहती कि सब लोग भगवान कृष्ण की सेवा करें। और आध्यात्मिक जगत में यही भाव होता है कि सब लोग अपने आप को दास समझते हैं और सब उधर कॉम्पिटिशन चलता है कि मैं दास कैसे बनू, मैं सेवा कैसे करूं। भौतिक जगत में क्या नियम होता है कि आई फर्स्ट यू लास्ट, कि प्रथम मैं भोग करूंगा, अगर बचा तो आप कर लेना, है ना। वो अगर भोजन की लाइन में भी सबसे पहले झगड़ा चलता है कि मैं पहले। लेकिन आध्यात्मिक जगत में या हम इसको भी देखते कि प्रभु जी आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, मैं तो बाद में ले लूंगा, बच गया तो हम ले लेंगे। तो ये भावना में रहते हैं। कई बार कई भक्त तो अंत में प्रसाद लेते हैं कि बोलते ठीक है नो प्रॉब्लम। तो आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति दास की भावना में रहता है और यहां भौतिक जगत में कोई दास बनना नहीं चाहता है। उनको लगता है कि क्योंकि दास इसलिए नहीं बनना चाहता है कि देखता है कि दास का तो शोषण हो रहा है इस जगत में। जो भी सर्वेंट होता है, दास होता है, सेवक होता है, जनरली उसका शोषण किया जाता है। कंपनी में भी बहुत सारा काम करवा लेंगे, कार्य करवा लेंगे, थोड़ी सी तनख्वाह देंगे, तो यहां शोषण होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में पोषण है, वहां शोषण नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के भक्त और भगवान में एक स्पर्धा चलती है कि कैसे सेवा करें। भगवान कृष्ण अर्जुन के सेवक बनना चाहते। जब हम देखते हैं महाभारत में कहानी कि अर्जुन बोले कि देखो अर्जुन, एक तो नारायणी सेना है और एक मैं हूं, आपको जो चाहिए ले लो, मैं तो अस्त्र शस्त्र उठाने वाला नहीं है, मैं निहत्ता रहने वाला हूं, आप सोच लो क्या करना है। तो यह अर्जुन के बड़ा टेस्ट था, कभी नारायणी सेना जो भगवान की शक्ति है और यहां भगवान शक्तिमान है, चॉइस था कि अभी हम शक्तिमान को लेंगे या शक्ति को लेंगे। तो यहां चेतना का फर्क पड़ता है कि दुर्योधन शाक्त था, मतलब वो शक्ति में विश्वास रखता था, और भगवान का अर्जुन भक्त थे, जो कि भक्त सर्वशक्तिमान में विश्वास रखते हैं। तो अर्जुन बोले कि तुम युद्ध करो या मत करो, लेकिन मुझे तो आप ही चाहिए। तो भगवान बड़े खुश हो गए, बोले अर्जुन तुम दोबारा सोच लो, मैं कोई युद्ध नहीं करने वाला, कोई हाथ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाला हूं। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, युद्ध अगर करना है किसी क्षत्रिय को, योद्धा को, तो उसे सबसे आवश्यक होता है सारथी की। अगर सारथी अच्छा है तो युद्ध में बहुत आसानी होती है, तो आप सारथी बन जाओ। तो भगवान बोले अब मैं तो सारथी बन सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान खुशी हो गई, भगवान बोल सकते थे मैं द्वारकाधीश हूं भाई, मैं सारथी नहीं बन सकता, मैं ड्राइवर बनने वाला हूं क्या, मैं अपने तंबू में रहकर तुमको गाइडेंस करूंगा। और अर्जुन इतना भगवान खुश हो जाते कि मैं सारथी बनूंगा, लेकिन अर्जुन एक बात है, युद्ध में बहुत हाहाकार रहेगा, बहुत कोलाहल रहेगा, मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा कि मुझे राइट में जाना है लेफ्ट में जाना है, तो क्या करूं, मुझे लात मारने का, अगर तुमको लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट लात मारने का और राइट में जाना है तो लाइट। भगवान भक्तों की लात भी खा लेते हैं, ये भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान है। भगवान भक्तों का दास बनना चाहते हैं और भक्त भगवान का दास बनना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद जी का एक ही भाव था कि सब जगत में कृष्ण का नाम हो जाए। श्री प्रभुपाद जी ने कोई भी मंदिर को नाम नहीं दिया कि प्रभुपाद आश्रम या प्रभुपाद मंदिर, कहीं भी नाम नहीं दिया, सब जगह राधा श्याम सुंदर मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर या राधा वृंदावन, सब जगह राधा कृष्ण का नाम फैलाया और भगवान ने प्रभुपाद जी का नाम फैला दिया। इतनी मात्रा में पुस्तकें छपवा दी भगवान ने, करोड़ों करोड़ों की उसमें, और पाश्चात्य देश के लोगों ने भी उसका खरीदा उस, नहीं तो लोग सोचते थे पाया ये कौन है किताब, हम कुछ जानते। करोड़ों की मात्रा में पुस्तकें बिकी प्रभुपाद जी की, और हर पुस्तक में प्रभुपाद जी का उसमें वर्णन है, प्रभुपाद जी का फोटो है, प्रभुपाद जी का परिचय है। तो जिस तरह प्रभुपाद जी ने भगवान का गुणगान किया, भगवान ने प्रभुपाद जी को प्रसिद्ध कर दिया। तो आज जगत के कोने कोने में लोग प्रभुपाद जी को जानते हैं। आज जगत में लोग महात्मा गांधी या नेहरू को नहीं जानते, लेकिन प्रभुपाद जी को जानते हैं, क्योंकि उनकी पुस्तकें कहीं वो भक्त भी नहीं पहुंचते हैं, हरि नाम भी नहीं जाता है, वहां प्रभुपाद जी के ग्रंथ आपको मिलेंगे। प्रभुपाद जाने के पहले ही ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश वहां पहुंच गया था। तो ये भगवान का और भगवान के भक्तों में एक स्पर्धा चलती है, लेकिन लोग इस चीजों में विश्वास रखते नहीं, क्योंकि उधर नहीं जाना चाहते। अभी कभी कभी वर्णन देते हैं आचार्य कि जंगल में अगर एक पशु के पीछे दूसरा शेर लग जाता है तो बचने के लिए अपना मुंह किसी जंगल में कुछ छिद्र या होल होता है उसमें अपना मुंह डाल लेता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन इससे बचने वाला नहीं है वो। तो अगर लोग बोलेंगे कहेंगे कि हम शास्त्र में विश्वास रखते नहीं, हम नरक स्वर्ग में विश्वास रखते नहीं है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, उनको तो जाना ही पड़ेगा। और एक हम भक्त हमको बता रहे थे कि इस जगत में भी नरक है, दो प्रकार के विशेष नरक हमको इस जगत में मिलते हैं। एक तो होता है हॉस्पिटल, ये भी एक प्रकार का नरक है। जब व्यक्ति को यातना होती है, दुख होता है, तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसके संबंधी, और जाते ही आजकल तो एलोपैथी है, जाते ही इंजेक्शन लगा देते हैं, सलाइन लगा देते हैं, अलग अलग प्रकार की गोलियां, जो भी कड़वी गोलियां होती है देते हैं उसको, व्यक्ति को तकलीफ होता है। दुख औषधिम तदापि दुखम, दुखों को निवारण करने जाता है और उसका दुख और बढ़ जाता है। हॉस्पिटल में तो वो दुख कम करने जाता है ना, लेकिन हॉस्पिटल जाने से उसका दुख बढ़ जाता है, सलाइन लगा लगा के उसका दुख बढ़ जाता है, और अंत में 10 दिन के 15 दिन के बाद उसको बिल देखता है तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अरे बाप रे, अभी कौन पे करेगा। कई हॉस्पिटलों में तो वो लोग पैसा पहले अदा करो बाद में एडमिट कराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि हम जितना मिल निकालेंगे इतना। तो एक प्रकार का नरक है, और दूसरा नरक है कारागृह। कारागृह में तो हम लोग गए नहीं, लेकिन हम लोग जाते हैं कारागृह में प्रचार करने के लिए। सार्वभौम प्रभु वगैरह जाते हैं आगरा के कारागृह में, तो कारागृह भी एक प्रकार का नरक है। वहां की परिस्थिति भी अनुकूल नहीं होती है, वहां मॉस्किटो आपको मच्छर काटेंगे, सोने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए कुछ तो दे देंगे, बहुत कुछ काम करवा के लेंगे, पिटाई करेंगे, अलग अलग प्रकार के कारागृह होते हैं, कहीं सख्त मजूरी होती है तो वहां पिटाई बहुत होती है, तो ये कारागृह भी नरक है। तो एक भक्त मुझे श्लोक बता रहे थे, बहुत सुंदर श्लोक है, वैद्यराज नमस्तुभ्य यमराज सहोदर, यमराज हरन्ति प्राण वैद्यराज धनानि च। एक होता है वैद्यराज, दूसरे यमराज। यमराज तो बेचारे प्राण लेके जाते हैं, लेकिन वैद्यराज प्राण तो लेता ही है लेकिन धन भी ले जाता है। तो इस प्रकार का वर्णन है। तो कई बार बोलते हैं कि लोग क्या है, आप लोग बोलते हैं भगवान तो दीन बंधु है, करुणा सिंधु है, आप लोग तो भगवान का कैसा वर्णन करते हैं कि सबको कृपा करने वाले हैं, फिर भगवान ने नरक क्यों बनाया, और इतनी सारी यातनाएं क्यों, आप बोलते हैं कि वहां टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, गन्ने जैसा जूस निकालते हैं,
बहुत कुछ है, और बोलते हैं कि एक बात बताओ कि नरक है वहां यातना भी है लेकिन शरीर तो यहां चल गया, यातना किसको दी जाती है, आत्मा तो दिव्य है, फिर कहां कौन सा नरक, कहां सी यातना है। वो लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन उनको मूर्खों को पता नहीं कि वहां एक यातना शरीर दिया जाता है, और वो शरीर विशेष प्रकार का होता है कि उस शरीर को भयंकर यातना मिलती है लेकिन वो नष्ट नहीं होता, उससे टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसको यातना होती है लेकिन नष्ट नहीं होता है। जैसे इस जगत में गन्ने का जूस निकाल देना, वैसे भी उस शरीर को डाला जाता है, उसका जूस निकल जाता है, और ऐसा कई हजारों लाखों वर्ष तक चलता है लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता है। यातना शरीर दिया जाता है यातना के लिए, और इतनी भयंकर यातना होती है। और यहां तक वर्णन है कि कभी कभी व्यक्ति ब्रह्मा जी के जन्म से लेकर ब्रह्मा जी की मृत्यु तक नरक में ही रहता है, इतनी भयंकर यातना करते हैं। आप सोचो, कोई व्यक्ति गाय का मांस खा रहा है तो शास्त्र में वर्णन है कि गाय के शरीर पर जितने केस है उतने कल्पों तक वो नरक में रहता है। आप गाय के शरीर के केस को गिन सकता है, और कल्प मतलब क्या हो गया, इतना भयंकर। और आज हिंदू लोग भी गाय का मांस खा रहे हैं, इतना भयंकर परिस्थिति है। आपको जानने को बड़ा दुख होगा कि गाय का मांस का निर्यात करने वाला भारतीय हिंदू है ना, क्योंकि अमेरिकन लोग भी अभी थक गए गाय को काट काट कर, वो बोलते भी हम आप ही लोग काट के हमको दे दो, तो ये हो रहा है। इसलिए हमको गोरक्षा या इसका प्रचार करना बड़ा आवश्यक है। भारत देश स्वतंत्र हुआ था तो भारत की आबादी थी 45 करोड़ और गाय की संख्या थी 90 करोड़, मतलब एक व्यक्ति के पीछे दो गाय थी। आज भारत की आबादी है 120 करोड़ और भारत में गाय बची है करीबन 1 करोड़ 20 लाख, मतलब 100 व्यक्ति के पीछे एक गाय, और हर व्यक्ति दूध पी रहा है। एक गाय तो 100 लोगों को दूध दे नहीं सकती है, इसका मतलब है ठीक से दूध भी नहीं मिला लोगों को। और कुछ सालों के बाद अगर गोरक्षा नहीं हो पाएंगी, अगर इसका प्रचार नहीं होगा, तो गाय देखने के लिए व्यक्ति को जाना पड़ेगा प्राणी संग्रहालय में कि गाय ऐसी होती है और यहां से दूध निकलता है। कई लोगों को तो बच्चों को पता ही नहीं, बच्चों को पूछा दूध कहां से आता है, वो दूध वाला देता है, दूध डेयरी से आता है, लोगों को पता ही नहीं कि दूध गाय से आता है करके बच्चों को। शहरों में तो गाय, शहरों में कुत्ते रख सकते हैं, बिल्लियां रख सकते हैं आप, लेकिन गाय नहीं रख सकते। हमारे मंदिर में गाय थी तो उधर से रिपोर्ट आया, कॉर्पोरेशन से नोटिस आ गए कि आप गाय नहीं रख सकते, है ना, गाय फिर गाय को आप भेज दीजिए, रख नहीं सकते हैं इस प्रकार के, है ना। हालांकि वैश्यों का कार्य है कृषि गोरक्षा वाणिज्य, गोरक्षा करनी चाहिए, तो गाय को अलाउ ही नहीं करते, रोड पे गाय नहीं होनी चाहिए, और गाय को है तो कतलखाने में भेज देते, खुद ही कतलखाने खोल दिया उन्होंने, गवर्नमेंट के अपने खुद के कतलखाने हैं। कोई भी गाय अगर रोड पे देखेंगी तो उसको गाड़ी में डाल देंगे, काट के भेज देंगे। तो ये बड़ा महापाप चल रहा है, घोर अंधकार चल रहा है। हम लोग भक्ति में है, इस्कॉन की चार दीवार के अंदर में है, हमको बहुत सारा कुछ पता नहीं है, पता होना भी नहीं चाहिए, लेकिन घोर महाभयंकर चीजें जगत में चल रही है, और लोगों की क्या गति होंगी। कलयुग में तो यमराज को टाइम ही नहीं होता है, बड़े बिजी रहते हैं, 22-22 घंटा काम करना पड़ता है उनको, क्योंकि लाइन लगी हुई है, लोगों की लाइन लगी है, मुश्किल से 2-3 घंटा सोते होंगे। सतयुग आता है तो थोड़ा आराम मिलता है उनको, कि सतयुग में बहुत लोग कम पाप करते हैं, थोड़ा आराम ले लेते हैं, लेकिन कलयुग आते ही यमराज जी रेडी हो जाते हैं। और यमदूत भी, उनको भी फुर्सत नहीं होती है, आए दिन लोगों लेके जाना पड़ता है। कोई तो स्वर्ग में जाता है, कौन अच्छे कार्य कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन अभी प्रभुपाद जी कृपा के कारण थोड़े लोग हरिनाम सुन रहे हैं और हरि प्रसाद खा रहे हैं, हरि का गुणगान कर रहे हैं थोड़े बहुत, और प्रभुपाद जी का पुस्तक को थोड़ा स्पर्श करके बहुत सारे लोग अभी नरक जाने से बच रहे हैं, और बहुत लोगों के पास हमको पहुंचना है, ताकि बहुत सारे, ये अच्छा है कि भारत की आबादी बढ़ रही है, एक दृष्टि अच्छा है कि हम लोग उनको प्रचार कर सकते हैं, है ना। और बाहर के पाश्चात्य देश में लोग ज्यादा आबादी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं ज्यादा, उधर तो सब लोग 100% ही उधर नरक में जाने वाले हैं। उधर भी अभी थोड़ी सी आशा का किरण है, क्योंकि उधर भी हरिनाम का प्रचार हो रहा है, हरि कथा, और वहां भी लोग जगन्नाथ रथ यात्रा वगैरह निकाल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हो रहा है। तो ये विपरीत कर्म का वर्णन, विपरीत कर्म जीवात्मा क्यों करता है, इसका वर्णन ऋषभदेव पंचम स्कंद में, पंचम अध्याय में अपने पुत्रों को कर रहे हैं। हालांकि सारे जीवात्माएं तो भगवान के पुत्र है, लेकिन अपने पुत्र के द्वारा भगवान सब जीवात्माओं को
उसका वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विपरीत कर्म क्यों करता है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत इंद्रिया प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ने यत आत्मनोयम असन अपि क्लेशद आस देह। कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्तों को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो विकर्म में लगता है। इंद्रिय तृप्ति ही लक्ष्य, मैं शरीर हूं और मेरे शरीर के संबंधी मेरे हैं और इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, तब व्यक्ति प्रमत्त, मत्त मतलब पागल और प्रमत्त मतलब विशेष रूप से पागल, तो विशेष रूप से पागल होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसलिए विकर्म करता है, बुरे कर्म करता है। और वो ये नहीं जानता है कि पिछले बुरे कर्मों के कारण ही उसको भौतिक शरीर मिला है जो कि दुखों का स्रोत है, और फिर भी विकर्म में लगा रहता है। ये नहीं जानते हुए कि आगे भी मुझे इस प्रकार के भौतिक देह अलग अलग योनि में स्वीकार करने पड़ेंगे जो कि बहुत ही दुख का स्रोत है। तो इंद्रिय तृप्ति के कारण, ये जानने के कारण, ये नहीं जानने के कारण कि वो भगवान का दास है, वो दिव्य है, वो आत्मा है, व्यक्ति अपने आप को शरीर समझकर इंद्रिय तृप्ति कर विकर्म करता है, विपरीत कर्म करता है, और विपरीत कर्म के कारण उसको नरक यातना भोगनी पड़ती है। तो तीन प्रकार के कर्म है, विकर्म, अकर्म और कर्म। कर्म मतलब अच्छे कर्म जो कि पुण्यमय कर्म, और विकर्म मतलब विपरीत कर्म जो शास्त्र के विरुद्ध है, और अकर्म मतलब दिव्य कर्म। तो ये भक्तिमय कर्म है, भगवान की संतुष्टि के लिए, भक्तों की संतुष्टि के लिए किए गए कर्म अकर्म है। अकर्म का मतलब जिसमें कर्म बंधन नहीं है, कर्म में कर्म बंधन है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो कर्म बंधन है, यहां वापस आना पड़ेगा, सुख भोगना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, या इस जगत में स्वर्गीय सुख लेना पड़ेगा। और विकर्म करेंगे तो यहां आना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन अकर्म करेंगे, दिव्य कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान के धाम आसानी से चले जाएंगे। यहां भी भगवान के धाम का सुख प्राप्त करेंगे और मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम जाएंगे। तो भक्ति में अभी भी सुख है और आगे भी सुख रहेगा, और भक्ति नहीं करेंगे तो अभी भी दुख है और आगे दुख भोगना पड़ेगा। तो एक लास्ट में थोड़ा पॉइंट बताता हूं कि चाणक्य बताता है कि इस जगत में भी हम देखते हैं कि कौन नरक से आया है या गलत योनि से आया है, कौन स्वर्ग या अच्छे योनि से आया है। तो जो लोग दान देने में आनंद प्राप्त करते हैं, मधुर वाणी बताते हैं, देवताओं की या भगवान की पूजा करते हैं और कृष्ण भक्तों की सेवा करते हैं, इस प्रकार के लोग या तो स्वर्ग से या अच्छे कर्म करके ही जगत में आए हैं। और जो हमेशा कटु वचन बोलते हैं, गंदे वचन बोलते हैं, अपने स्वजनों से, अपने बांधु बांधवों से वैर रखते हैं और नाना प्रकार की बीमारियों से त्रस्त रहते हैं और कोर्ट कचहरी में फंसे रहते हैं, इस प्रकार के जीव या तो नरक से आए या बहुत विपरीत कर्म करके आए हैं। तो हमें जान लेना चाहिए कि ऐसे तो भक्तों के बारे में कोई डाउट ही नहीं है, आप लोग सब दिव्य कर्म करके आए हैं, इसलिए तो प्रभुबाजी की संस्था में, वो भी वृंदावन में वास कर रहे हैं। मैं तो वृंदावन में वास करता नहीं हूं, मैं पुणे से आया हूं और बाबा से प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैंने आज का क्लास दिया है। आज का क्लास तो चैतन्य चक्रवर्ती प्रभु का था, लेकिन अचानक रात को उनकी तबीयत ठीक खराब हो गई, तो फिर हमने थोड़ा प्रयास किया इस श्रीमद भागवतम को थोड़ा बोलने का। तो अगर हमने कुछ हमारे साक्षात्कार से ज्यादा कुछ बोल दिया होगा और कुछ अलग से कुछ बोल दिया होगा जिसमें आपको अच्छा नहीं लगा हो तो माफ कर देना। वैसे तो भागवत भगवान की वाणी है और इसमें भगवान का वर्णन है। हरे कृष्ण, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।